سورت بکرا کے بعد سورت آل عمران قرآن پاک کی دوسری طویل سورہ ہے. دونوں کے مجموعے کو الزہراوین بھی کہتے ہیں اور الغمامتین بھی کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادوگر ان دونوں سورتوں کی تاب نہیں لاتے, اور یہ دونوں سورتیں قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں پر سایہ بنیں گی. ہم اس سوچ کے ساتھ پڑھیں گے اور ساتھ ہی یہ دعا بھی کریں گے کہ اللہ قیامت کے دن یہ سورتیں ہمارے لیے سائے کا ذریعہ بنیں اور ہم اس میں سے اپنے لیے عمل کی چیزیں لیں. دوسری چیز یہ کہ سورت البقرہ کے آغاز میں خاص طور پہ ہم نے دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کی تاریخ تھی. سورت آل عمران میں نصارہ کے عقائد اور ان کی کچھ ہسٹری ہے. آئیے دیکھتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم. اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی ہے جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے. حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں. اس میں اعظم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے جو بات پتہ چلتی ہے تو قرآن پاک کی تین آیتوں کے اندر اسم اعظم ہے, اور جس کے ساتھ دعا مانگی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے. ایک آیت الکرسی ہے, دوسری یہ آیت ہے, اور تیسری سورۃ طہٰ کی ایک آیت ہے, آئے گی انشاءاللہ بتائیں گے. تو ہمارے لیے اس میں چھوٹا سا ایک عمل کا نقطہ ہے کہ جب بھی دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ سے اسی طرح مانگیے کہ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم. اے نبی, اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی. اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے, اور اس نے وہ کسوٹی اتاری جو حق و باطل کا فرق دکھانے والی ہے. اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے. زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں. یہاں چند سیکنڈ تک غور کرتے ہیں. جب ہر چیز اس کی نظر میں ہے تو میرا دل بھی اس کی نظر میں ہے. میری راتیں, میرے دن, میری تنہائی. تو اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہوئے انسان ہر موقع پہ اپنی عزت کی اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے. تو آپ کی میری صورت, اللہ کا فیصلہ. کبھی کسی کی صورت کو برا نہ کہیے. اور دنیا کی تصویریں کاغذ کی, مٹی کی, پلاسٹک کی بنی ہوئی, شیشے کی بنی ہوئی, اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تصویر بناتا ہے اس میں آواز بھی ہے, اس میں جذبات بھی ہیں, اس میں آنسو بھی ہیں. تو ایک بچہ جو نیو بورن بیبی ہے اس کو دیکھ کر واقعی یقین آتا ہے کہ اس کو اللہ نے بڑے پیار سے بنایا. اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں. اے نبی, وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے. یعنی کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے کھڑ لی. اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں, ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں, اور دوسری متشابہات. جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں, حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے, یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں. اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک چونکہ دونوں جہانوں کی خبریں دیتا ہے, ایک اس دنیا کی, اس کے احکامات, اس کے مسائل, نماز, روزہ, عام زندگی. ایسی آیات پہ ہی غور و فکر کرنا چاہیے. نماز کی بات ہے, طلاق کی باتیں پیچھے ہم نے پڑھی, باقی کچھ چیزیں ہیں جن کا غیب سے تعلق ہے, جو آخرت کے معاملات کو شو کرتی ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں. تو اس پہ زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں. آپ کو پتا ہے کہ بہت بگاڑ آ جاتا ہے جب انسان ایسی آیتوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے جس میں عمل کی کوئی بات نہیں. اس کی چھوٹی سی مثال یہ کہ حروف مقطعات, جن کا کوئی معنی بھی نہیں پتا ہوتا, تو ہمیں اس کو کیا پڑھنا چاہیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اس کے ہر لفظ پہ 10 نیکیاں مل رہی ہیں, دیٹس اٹ. اس سے زیادہ ان کے ساتھ ہم باتیں جوڑیں گے تو بعض دفعہ پھر انسان ہدایت سے دور ہونے لگتا ہے. اور جب ہدایت کی بات ہوئی تو ساتھ ہی غم لگ گیا. کس بات کا؟ کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ایک ایمان والے کی سب سے قیمتی متاع اس کی ہدایت ہوتی ہے. پہلے پارے سے شروع ہوا سفر اہدنا الصراط المستقیم کی دعائیں مانگنے کا, یہاں بھی یہ غم لگ گیا. आप और मैं शऊर के साथ इस दुआ को मांगा करेंगे। वो अल्लाह से दुआ करते हैं कि परवरदिगार, जब तू हमें सीधे रास्ते पर लगा चुका है तो फिर कहीं हमारे दिलों को टेढ़ में मुबतला ना करना। है ये फिक्र हमें होना चाहिए। यहाँ दिल से 3 सेकंड में अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह भी कुरान की तरफ जो मेरे कदम उठे हैं ये सारी जिंदगी धरी रहे, मुझे कभी भी इससे दूर ना करना। हमें अपने खजाने फैज से रहमत अता कर कि तू ही फ़ियाज़े हकीकी है। परवरदिगार तू यकीनन सब लोगों को एक रोज जमा करने वाला है। फिर देखिए वइलैही तुहशरून, वापसी का सफर बंदे को सीधा कर देता है। जिसके आने में कोई शुबा नहीं, तू हरगिज अपने वादे से टलने वाला नहीं। इसके बरक्स जिन लोगों ने कुफर का रवैया इख्तियार किया है, इन्हें अल्लाह के मुकाबले में ना इनका माल कुछ काम देगा ना औलाद। वो दोजख का ईंधन बनकर रहेंगे। इनका अंजाम वैसा ही होगा जैसा फिरौन के साथियों और इनसे पहले के नाफरमानों का हो चुका कि उन्होंने आयत इलाही को छुटलाया। नतीजा ये निकला। आप देखिए कि बड़े बड़े लोग भटके हुए चले गए, आज है उनका नाम। तो आज दुनिया में रहते हुए अगर अल्लाह ताला की आयतों का मजाक उड़ाया जाए या अगर अल्लाह की आयतों को पीछे डाल दिया जाए तो याद रखिए कि ये चीज़ इंसान के लिए बहुत बड़े बवाल की है। उनका नतीजा क्या हुआ कि अल्लाह ने इनके गुनाहों पर उनको पकड़ लिया। नोट कर लें, अल्लाह गुनाहों पर पकड़ता है। ये मत सोचिए कि अल्लाह ताला को पता ही नहीं चलता और इंसान गुनाह कर जाए। हक ये कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। पस नबी, जिन लोगों ने तुम्हारी दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया उनसे कह दो कि करीब है वो वक्त जबकि तुम मखलूब हो जाओगे और जहन्नुम की तरफ हांके जाओगे और जहन्नुम बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाह हम सबको जहन्नुम से महफूज रखना। तुम्हारे लिए इन दोनों गिरोहों में एक निशान इबरत है। जो बदर में एक दूसरे से नबर्द आजमा हुए, एक गिरोह अल्लाह की राह में लड़ रहा था और दूसरा गिरोह काफिर था। देखने वाले सर की आंखों से देख रहे थे कि काफिर गिरोह मोमिन गिरोह से दुगना है, मगर नतीजे ने साबित कर दिया कि अल्लाह अपनी फतह और नुसरत से जिसको चाहता है मदद देता है। आंखें रखने वालों के लिए इसमें बड़ा सबक पोशीदा है। क्या सबक है? आप देखिए, मेहनत तो सभी करते हैं ना। अल्लाह के रास्ते में निकलने वाला भी मेहनत करता है और शैतान के रास्ते में भी। क्या दोनों की मेहनत एक बराबर है? क्या दोनों का अंजाम एक है? नहीं। तो हमेशा काम करते वक्त, मेहनत करते वक्त ये देखिए किस रास्ते पे हूँ। अगर हक के रास्ते में, खैर के रास्ते में, थोड़ी सी मुश्किल भी आ गई कोई बात नहीं, अजर ज़रूर मिलेगा, अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करता। इसके बाद खूबसूरत आयत है। आप फिर इस आयत को आपके थीम से जोड़ देती हो कि हमने थीम रखा कि माओं को अपने बच्चों की फिक्र लगनी है, नस्लों की हिफाजत है। इस जगह आपको दुनिया की वो दौलतें और दुनिया की वो नेमतें एक जगह जमा मिलेंगी कि जो अमूमन हम अपने बच्चों के लिए चाहते हैं। लेकिन आप देखेंगे सिर्फ इन नेमतों की तलब रखना और आखिर वाली चीज को भूल जाना तो ये फिर अपनी हलाकत है। कैसे? ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसाई वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़न्तरा। लोगों के लिए मरगूबात नफ्स, यानी वो चीजें जिसमें नफ्स की रगबत होती है, औरतें, औलाद, सोने चांदी के ढेर, चीदा घोड़े यानी निशान लगे हुए बहुत ब्रांडेड घोड़े, मवेशी और जरई जमीनें बड़ी खुशाइन बना दी गई हैं, मगर ये सब दुनिया की चंद रोजा जिंदगी के सामान है। यहाँ थोड़ा सा एक दर्द भरी सोच लाते हैं। हमारी नस्लों को, हमारी औलादों को ये सब कुछ मिल भी गया, लेकिन फिर उसके बाद अल्लाह का फैसला आ गया, खत्म। आप लोगों ने कई ऐसे लोगों के नाम पढ़े होंगे। पिछले साल जब दौरे कुरान हमने करवाया तो उन दिनों में एक मुस्लिम लड़का था, उसका नाम मेरे जहन से इस वक्त चला गया, तो उसकी वीडियोस बहुत शेयर हो रही थी गिफ्ट ऑफ कैंसर के नाम पे। तो उसका खुलासा क्या था कि वो दुनिया के अरूज पे था। $60,000 की एक घड़ी उसकी बाजू में होती थी, एक ब्रेसलेट, $700 का एक चप्पल उसके पाँव में था और बड़ी बड़ी ब्रांडेड घड़ियाँ, ग्लासेस, कपड़े उसका शुगल थे। अचानक डायग्नोस हुआ और पता चला कि वो स्टेज 4 का कैंसर का मरीज है। बस इस झटके ने कि ये सारी दुनिया की चीज़ें मेरे से अब कुछ अरसे में छिन जाएंगी, उसके अंदर एक झटका लगाया। उसने अपनी ज़िंदगी को चेंज किया, एक आलम दीन के साथ बैठा, दीन सीखा और इसी के साथ फिर उसने कुछ ऐसी NGOs बनाई कि जिसमें जो कुछ उसका माल और एसेट्स और गाड़ियाँ थी फिर उसने उसको मतलब लिक्विडेट किया, सदके में दी। और वो कहता था कि ये कैंसर मेरे लिए एक तोहफे से कम नहीं है और कभी आप उसकी वीडियो देखें, अगर आप गूगल पे या यूट्यूब पे जाके गिफ्ट ऑफ कैंसर लिखेंगे तो आ जाएगा, आप देखेंगे कि कैसे ये दुनिया एक मिनट में छिनती है। तो अपनी औलादों के लिए सिर्फ इन चीज़ों की फिक्र ना करें, ये खुद ही मिल जाएंगी। आप बड़ी चीज़ की फिक्र करेंगे ना, छोटी खुद मिलेंगी। इसीलिए अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं, हकीकत में जो बेहतर ठिकाना है वो तो अल्लाह के पास है, कहो मैं तुम्हें बताऊं। हम कहते हैं जी अल्लाह जी आप जरूर बताइए। कुला नबीकुम बिखैर मिन ज़ालिकुम, इनसे ज्यादा अच्छी चीज क्या है? जो लोग तकवा की रविश इख्तियार करें इनके लिए इनके रब के पास बाग हैं, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वहां इन्हें हमेश की जिंदगी हासिल होगी, पाकीजा बीवियां इनकी रफीक होंगी और अल्लाह की रजा से वो सरफराज होंगे। अल्लाह हमें अपनी रजा से सरफराज कर दे। अल्लाह अपने बंदों के रवैये पर गहरी नजर रखता है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि मालिक हम ईमान लाए, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा। आप देखिए कि अभी हमने सिर्फ 15 आयतें पढ़ी हैं और दूसरा दुआओं का मजमूआ आ गया। नोट कर ले, सूरत आल इमरान में सबसे ज्यादा दुआएं हैं, दुआओं से भरी हुई सूरत है। और हमें आतिशे दोजख से बचा ले, ये लोग सब्र करने वाले रास पास हैं, फरमा बरदार हैं और फैयाज हैं, और रात की आखिरी घड़ियों में अल्लाह से मगफरत की दुआएं मांगा करते हैं। अब आ रही है सहरी, आज से मांगिए दुआएं, दिल भर के नस्लों के लिए दुआ मांगे। तो आज रात आपने अपनी औलाद के लिए दुआ मांगनी है कि अल्लाह हमारे बच्चों को सही मानों में अपना प्यार दे दे, उनके अंदर की आंख खोल दे, उनको जिंदगी का मकसद समझ आ जाए। बाकी देखिए ये दुनिया की चीजें कुफार को भी मिलती हैं, फुज्जार को भी मिलती हैं, क्या बड़ी बात अगर हम मुसलमानों को मिल गई। ये सब चीजें मकसद नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने खुद ही मोहब्बत डाली फिर खुद ही रोकता है, मोहब्बत क्यों डाली? लोग कहते हैं फिर तूने इतना हुसन क्यों बनाया अगर हमने देखना नहीं, इतनी प्यारी दुनिया क्यों बनाई? तो ये इम्तिहान है, अल्लाह ने आखिरत का तारुफ कराया है कि देखो ये दुनिया में छोटी छोटी चीजें हैं ना, आखिरत में ये अपनी असल शक्ल में होंगी। और इसी के साथ साथ ये भी बता दिया कि दुनिया में ये चीजें हैं इसीलिए निजाम चल रहा है। अगर औलाद की मोहब्बत ना होती तो कोई माँ इतनी मेहनत करती? अगर औलाद से मोहब्बत ना होती तो बाप मेहनत करते? तो ये दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए अल्लाह ने डाली, लेकिन मसला कहाँ बिगड़ता है? जब ये मकसद ज़िंदगी बन जाती है। तो मकसद हयात ये चीज़ें नहीं हैं। आप अल्लाह की ज़ात को राज़ी करना अपना और अपनी औलादों का मकसद बनाते हैं, ये सब चीज़ें रास्ते में ऐसे पड़ी मिलती हैं जैसे आपको इसकी कोई कदर भी नहीं मिलती। शहीद अल्लाह, इसके बाद बड़ी प्यारी आयत है जिसमें इल्म वालों की शान है। इतना सा आपको बता दूं कि इस आयत में अल्लाह ने अपने और फरिश्तों के नाम के साथ इल्म वालों का नाम लिया है और गवाहियों का जिक्र है। आइए देखते हैं, और आप फील कर रहे हैं कि इस बारे में इल्म का बहुत तज़किरा है। पीछे हमने अबू हुरैरा का किस्सा पढ़ा, इमाम बुखारी के बारे में पढ़ा। तो इल्म और नस्लों की फलाह व बहबूद साथ जुड़ा हुआ है। कैसे? अल्लाह ताला फरमाते हैं شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط। अल्लाह ने खुद इस बात की शहादत दी है कि इसके सिवा कोई खुदा नहीं है, और यही शहादत फरिश्तों और सब अहले इल्म ने भी दी है। वो इंसाफ पर कायम है, उस जबरदस्त हकीम के सिवा फिल वाक्य कोई खुदा नहीं। अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है। इस दीन से हटकर जो मुख्तलिफ तरीके लोगों ने इख्तियार किए, जिन्हें किताब दी गई, इनके उस तर्ज अमल की कोई वजह इसके सिवा ना थी कि उन्होंने इल्म आ जाने के बाद आपस में एक दूसरे पर ज्यादती करने के लिए ऐसा किया। हाईलाइट करें, इल्म आने के बाद इंसान शैतान से महफूज नहीं हो जाता, बल्कि शैतान इल्म आने के बाद ऐसी ऐसी सोचें दिल में लाता है कि इंसान तकब्बुर का शिकार हो जाता है, आपस में बगी बुगज, दूसरों को हकीर जानना। इसलिए हमेशा इल्म लेने के साथ साथ अपने अंदर आजजी को भी चेक करते रहे, और जो कोई अल्लाह के अहकाम और हिदायत की इताअत से इनकार कर दे, अल्लाह को इससे हिसाब लेते हुए कुछ भी देर नहीं लगती। अब अगर ऐ नबी ये लोग तुमसे झगड़ा करें तो इनसे कहो, मैंने और मेरे पैरोकारों ने तो अल्लाह के सामने सर तस्लीम खम कर दिया, अल्लाह हमें भी तौफीक दे, अल्लाह हमारे सर भी तेरे आगे झुक जाए। फिर अहले किताब और गैर अहले किताब दोनों से पूछो, क्या तुमने भी इसकी इताअत तो बंदगी कबूल की? हमें भी पूछना चाहिए अपने इर्द गिर्द वालों से। देखिए जहां मौका मिले किसी जगह इंट्रैक्शन करते हुए गैर मुस्लिम्स को अल्लाह से जोड़ें। आप अपने पास कुछ कैंडीज रखा करें, कोई चॉकलेट रख लें, कोई पैक बिस्किट रख लें, कहीं बैठे हुए इंट्रैक्शन के दौरान, बस में बैठे हैं साथ साइड वाली सीट पे कोई बैठ गया, इसी तरह से थोड़ी सी बात पहले उसको खाना ऑफर करें, कैन यू टेक दिस, कभी खजूर दे दें, कभी इंजीर दे दें, थोड़ी सी बात के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता व्हाट डू यू थिंक अबाउट गॉड, कोई कॉन्ट्राडिक्ट्री बात ना करें, कोई फिकी बात, कोई इस्लाम का ऐसा इशू जिसको लोगों ने कोई इशू बनाया उसकी बात नहीं, सिर्फ जब व्हाट डू यू थिंक अबाउट गॉड, पहले माँ की बात करें, वेर इज योर मॉम, हाउ वाज दैट, शी इज, थोड़ी सी माँ बाप की बात करते करते अल्लाह पे ले आए, 2 मिनट की गुफ्तगू में सिर्फ उसके दिल में एक, वो कहना चाहिए कि एक कंकर छोड़ दीजिए, एक ड्रॉप डाल दीजिए उसकी सोच में कि अच्छा गॉड भी होता है, अच्छा उसका भी हक है, यही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम सबसे पूछो कि हम तो मुसलमान हो गए, क्या तुम भी होते हो, क्या तुमने भी इसकी इताअत तो बंदगी कबूल की, अगर की तो वो राह रास्त पा गए, और अगर इससे मुंह मोड़ा तो तुम पर सिर्फ पैगाम पहुंचा देने की जिम्मेदारी थी, आगे अल्लाह खुद अपने बंदों के मामला देखने वाला है, क्या पता चला, पीछे ना पड़ो, बस हुज्जत दे दो प्यार से, स्माइल से, अच्छे चेहरे के साथ, और बस फिर जिच भी ना करो कि वो तुम्हारी चिड़ में फिर बात ही बदल दे। जो लोग अल्लाह के कामों हिदायत को मानने से इनकार करते हैं और इसके पैगंबरों को नाहक कत्ल करते हैं, ऐसे लोगों की जान के दर पे हो जाते हैं, जो खलके खुदा में से अदल और आस्ती का हुक्म देने के लिए उठे, इनको दर्दनाक सजा की खुशखबरी सुना दो। देखिए इसमें अल्लाह ने खबर दी कि कुछ लोगों का टारगेट होते ही वो लोग हैं जो लोगों को अच्छी बात बताते हैं, फरमाया अगर ऐसा कोई करता है, और ये हिस्ट्री से बात वाज़ेह है कि पिछली कौमों ने नबियों को कत्ल किया, नबियों को कत्ल करने की कोशिशें की, और हर दौर में जिसने भी हक बात की कोशिश की उसके पीछे लग गए, फरमाया उलाइकल्लज़ीना हबितत आमालुहुम फिद्दुनिया वल आखिरा, ये वो लोग हैं जिनके अमाल दुनिया और आखरत दोनों में जाया हो गए और इनका मददगार कोई नहीं। अलम तारा इलल्लज़ीना उतू नसीबा मिनल किताब, तुमने देखा नहीं कि जिन लोगों को किताब के इल्म में से कुछ हिस्सा मिला तो इनका हाल क्या है, कि जब इन्हें किताब इलाही की तरफ बुलाया जाता है ताकि वो इनके दरमियान फैसला करे तो इनमें से एक फरीक इससे पहलू तही करता है और इस फैसले की तरफ आने से मुंह फेर जाता है, उनका ये तर्ज अमल इस वजह से है कि वो कहते हैं आतिशे दोजख तो हमें मस्तक न करेगी, और अगर दोजख की सजा हमको मिलेगी भी तो बस चंद रोज, इसको हाईलाइट करें, ये है वो खुशफहमी जो अल्लाह का बंदे नहीं देती, लन तमस्सना नार इल्ला अय्यामा मादूदा, याद रखिए इल्ला अय्यामा मादूदात, आज मुसलमानों में से भी कुछ को यही खुशफहमी है, बिकॉज वी आर मुस्लिम दैट वी विल नॉट गो टू, अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन खुद को मुसलमान कहलाना या मुसलमान हो जाना इस बात की दलील नहीं है कि आप फायर प्रूफ हो गए, हाँ इंशाल्लाह ये इस्लाम ये ईमान आपके काम आएगा, शर्त ये है कि आप कोशिश करते रहे, डरते रहे, शिर्क से अपने आप को पाक करते रहे, इनके खुद साख्ता की तो ने इनको अपने दीन के मामले में बड़ी गलत फहमियों में डाल रखा था, ये भी नोट करें, ये खुश फहमियां होती हैं जो अमल से दूर कर लेती हैं, मगर क्या बनेगी इन पर जब हम इन्हें इस रोज जमा करेंगे जिसका आना यकीनी है, उस रोज हर शख्स को उसकी कमाई का बदला पूरा पूरा दिया जाएगा और किसी पर जुल्म ना होगा। इमेजिन कीजिए अल्लाह के सामने खड़े हैं और वहां अपनी सारी जिंदगी के आमाल को तुलवा रहे हैं, उस वक्त फिक्र लगेगी वफ़ियत कुल्लु नफ्सिम मा कसबत वहुम ला युज़लमून। इसके बाद की जो अगली दुआ आयात है इसके साथ एक छोटी सी दुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत माज बिन जबल को कहा कि मैं तुम्हारे चेहरे पे परेशानी के असरात देख रहा हूँ, कहा अल्लाह के नबी सल्लम कर्ज का बोझ चढ़ गया, जेरे बार हूँ, मुफलिस थे, किसी से कर्ज लिया वापस नहीं कर पा रहे, तो आपने फरमाया कि ये आयतें जो अभी हम पढ़ रहे हैं और इसके साथ एक छोटी सी दुआ है जो आपको इंशाल्लाह भेजी जा सकती है, और ये जो बुक है कर्ज वाली उसमें भी वो मौजूद है, हमारा एक कार्ड है दुआओं का उसके अंदर भी मौजूद है, तो वो आपने फरमाया कि पढ़ो, अगर तुम पर पहाड़ों के बराबर भी कर्ज होगा तो अल्लाह ताला उसकी अदायगी का इंतजाम कर देगा। आइए देखती है ये दुआ है क्या, कोई छू मंतर है? नहीं, अल्लाह की कुदरतों का इकरार है। قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ। कहो खुदाया मुल्क के मालिक तू जिसे चाहे हुकूमत दे और जिसे चाहे छीन ले, जिसे चाहे इज्जत बख्शे और जिसको चाहे जलील कर दे, भलाई तेरे इख्तियार में है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है, रात को दिन में फिरोता हुआ ले आता है और दिन को रात में, सच है कि नहीं, कैसे रात होती है और उसमें से सुबह की सफेदी निकलती है और कैसे इसका ऑपोजिट भी होता है। इतने बड़े बड़े काम जो हस्ती करने वाली है, बताइए क्या मेरे आपके मामलात और मेरी और आपकी ज़रूरतों को वो पूरा नहीं कर सकती? अल्लाह के ऊपर नज़रें लगाना सीख लीजिए, दुनिया के सब काम आसान हो जाएंगे। फरमाया, बेजान में से जानदार को निकालता और जानदार में से बेजान को, और जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। असल ये चीज़ है जिस पे नज़रें लगनी चाहिए। आप देखिए कि मुसलमान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए। हम जब थोड़े से हालात एडवर्स देखते हैं तो हम कहते हैं क्या होगा, देखो ना बड़े बड़े लोग हैं दुनिया में और मुसलमानों के इतने फलाह हैं, ये है वो है। जिसकी अल्लाह पर नज़रें लग जाएंगी उसको कभी भी कोई बड़ा नहीं लगेगा। तो अपने बच्चों के साथ बैठकर, बच्चे जब कहती है ना, तो आप न्यू बॉर्न बेबी से साल 2 साल के बच्चे ना सोचा करें। मुझे तो 15 साल का क्या 20 साल का बच्चा भी छोटा बेबी ही लगता है। क्यों? कि आपसे तो छोटा है। बस दफा हमारे उन्हें उनके बीच में ये थोड़ा सा गैप आने लगता है। बचपन में हम उनको टू मच टाइम दे लेते हैं, टू मच प्यार करते हैं, बिगड़ जाते हैं। जब बड़े होते हैं तो वो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हुए होते हैं। खुद से पूछिए कब आखिरी बार अपनी बेटी के साथ प्यार और मोहब्बत से बैठी? वो कौन सा आखिरी वक्त था जब अपने अपने बेटे को कहा बैठ आज माँ बेटा बातें करते हैं? ऐसी हमारे दिलों में गांठें पड़ जाती हैं, दूरियां, जो सारी दुनिया को आई लव यू कह लेंगे, बेटे को नहीं कहना, सर पे चढ़ जाएगा। बेटी को आई लव यू कह लो, अम्मा को आई लव यू को, ये तो हो ही नहीं सकता। तो कभी बैठ के फारिग बैठे, जो आपकी आज की टिप है कि बच्चों को वक्त दे, मैं इस पर अक्सर लोगों से कहती हूँ सिर्फ 15 मिनट। अब आप अपने टाइम को खुद मैनेज करें, जितने भी आपके बच्चे हैं घर में, जितने अफराद, हर एक को लीस्ट 15 मिनट वन बाय वन दें। और अगर सारे इकट्ठे बैठ जाए तो वो सारा 1 घंटा इकट्ठे यूज कर ले। बच्चों को फील हो कि आप उनकी माँ हैं, आप उनके बाप हैं। फिर भाई बहनों में आप बहन हैं, बहन को टाइम दीजिए, भाई को टाइम दीजिए। आज वक्त के साथ रिश्तों में से मिठास खत्म होती जा रही है। इतना बिजी, इतने मसरूफ, और सबसे बड़ी बात है हर एक की अपनी दुनिया। कोई जिए कोई मरे, एक कमरे में रहने वाले को दूसरे का नहीं पता। एक खा रहा है तो दूसरा सो रहा है, तो तीसरा पढ़ रहा है, तो चौथा कहीं जा रहा है। कहाँ से दिलों में मोहब्बत आएगी और कहाँ कोऑर्डिनेशन होगी? तो लिहाजा घरों में अल्लाह की बातें जब होंगी, जब अल्लाह से जोड़ेंगे, आप देखेंगे कि आपस में भी मोहब्बतें इंशाल्लाह बढ़ेंगी। फिर फरमाए, मोमिनीन अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को अपना रफीक और यारो मददगार हरगिज़ न बनाए। जो ऐसा करेगा इसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ ये मुआफ है कि तुम इनके जुल्म से बचने के लिए बज़ाहर ऐसा तर्ज अमल इख्तियार कर जाओ, मगर अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है। इसको हाईलाइट करिएगा, वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, 2 दफा आएगा ये जुमला, भी आप दोबारा भी सुनेंगे। अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है। जरा से इसको महसूस करें, अल्लाह की हस्ती, इतनी बड़ी जात, मालिकुल मुल्क, जानदार से बेजान को निकालने वाली, रात को दिन में, दिन को रात में बदलने वाली हस्ती कहती है कि वह युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा। क्या वाकई में अल्लाह से डरती हूँ? देखिए अल्लाह ताला से जो डर है ना, वो डर नहीं है जो शेर का या सांप का डर है। अल्लाह का डर क्या है? कि वो मुझसे नाराज ना हो जाए, मैं उसकी ना कदरी ना कर दूँ। जिससे मरूबियत, किसी इंसान से आप मरूब हो ना तो हर वक्त ये धड़का लगा रहता है मुझसे नाराज ना हो जाए। अल्लाह के साथ ये डर रखिए कि मेरा कोई जुमला अल्लाह को नाराज ना कर दे, मेरा कोई अमल उसको मुझसे नाराज ना कर दे, मेरी कोई ऐसी हरकत ना हो कि वो मुझे पटख के लग कर दे, और तुम्हें इसी की तरफ पलट कर जाना है। वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा वइलल्लाहिल मसीर। वापसी का सफर इंसान की जिंदगी को क्वालिटी का बना देता है। ऐ नबी, लोगों को खबरदार कर दो कि तुम्हारे दिलों में जो कुछ है इसे ख्वाह तुम छुपाओ या जाहिर करो, बहरहाल अल्लाह इसे जानता है। जमीन और आसमान की कोई चीज इसके इल्म से बाहर नहीं, और इसका इकतदार हर चीज पर हावी है। तो करने की क्या जरूरत है? जिस तरह बाहर को साफ करते हो उसी तरह अंदर को भी साफ कर लें। देखिए ना कि अल्लाह ताला आपके मेरे अंदर को भी जानता है, तो अंदर साफ रखने की जरूरत है ना। अगर दिलों में कीने हैं, बुग़्ज़ है, गंदगी है, हसद है, और आप अल्लाह ताला भी उसको देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि क्लोज़ेट भरी हुई है कपड़ों से, बू आ रही है, चीज़ें बिखरी हुई हैं, और मेहमान ने क्लोज़ेट खोल के देख ली। कितनी शर्मिंदगी, कितनी रुसवाई। और जब अल्लाह हमारे अंदर की गंदगियां देखता है तो क्या हमें उस वक्त शर्म नहीं आती? तो लिहाजा हर अंदर की चीज को बाहर से ज्यादा साफ करना है, वरना क्या होगा? यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुख्तरा। वो दिन आने वाला है, खत्म हो जाएगा जिंदगी का चेक, टाइम बाउंड जिंदगी आपकी मेरी, जब हर नफ्स अपने किए का फल हाजिर पाएगा। अपने किए को हाईलाइट करें। अच्छा किया फल मिलेगा, बुरा किया सजा मिलेगी। ख्वाह इसने भलाई की हो या बुराई, उस रोज आदमी ये तमन्ना करेगा, काश अभी ये दिन उससे बहुत दूर होता, या ये गुनाह ये पकड़ जो उसकी हुई ये उससे दूर होती। वह युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, दोबारा आ गया, और अल्लाह तुम्हें अपनी जात से डराता है। और जब बंदा डर जाए तो वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, अल्लाह अपने बंदों का नहायत खैर ख्वाह है। क्या पता चला, डरते रहे करते रहे। कहते हैं जो डर गया वो तर गया। जब हम निडर हो जाते हैं ना, बेखौफ हो जाते हैं ना, जब हम ये कहते हैं ना इट्स ओके, फिर मैं क्यों डरूं, मैं कितना डरूं, तो बस आप ना डरोगे। देखिए एक जुमला लिख लें, बंदा गुनाह करे और अल्लाह से डरे बच जाएगा, पर बंदा नेकी करे और अल्लाह से ना डरे पकड़ा जाएगा, और जब गुनाह करके उसको लीगल करे जस्टिफिकेशन दें, आज का दौर सब करते हैं, मुमकिन ही नहीं इसे रुकना, लो अब मैं कैसे रुकूं, तो फिर ये पकड़ की बात है। अल्लाह ताला हमें अपना डर अता फरमा दे। और अब आगे अल्लाह की मोहब्बत लेने का नुस्खा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाहा फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए नबी, लोगों से कह दो अगर तुम हकीकत में अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी इख्तियार करो, अल्लाह तुम से मोहब्बत करेगा। चाहते हैं हम अल्लाह हमसे मोहब्बत करें, तो उसका रास्ता नबी की इत्तबा। और नबी की इत्तबा क्या है? नबी के फुटस्टेप पे पांव रखकर चलना, जैसे नबी जिए वैसे जीना, जैसे नबी सोए वैसे सोना, जैसे नबी ने खाया वैसे खाना, नबी का लाइफस्टाइल अपना लो, अल्लाह तुम से मोहब्बत करेगा। दुनिया में भी ऐसे ही होता है, कुछ लोग कुछ लोगों के फैन बन जाते हैं। जब किसी के फैन बनते हैं फिर चेक करते हैं वो क्या खाते हैं, कहते हैं मैं भी ये खाऊंगा, वो क्या पहनते हैं मैं भी वही पहनूंगा। ये आज का जितना शो बिजनेस है मॉडलिंग का, वो क्या है, बड़े बड़े आर्टिस्टों को कुछ कपड़े जूते परस पकड़ा के वो तस्वीरों की सूरत में आपके सामने लाते हैं, ताकि तसव्वुर में उनको देखते हुए आप भी वही चीज़ें खरीदने लग जाएं। जिसकी बड़ाई दिल में आएगी उसी को हम फॉलो करेंगे, और नबी की सुन्नतों को तो ज़रूर फॉलो करें। क्यों? कि वो अल्लाह की बनाई हुई हैं, जिसको आप कहें कि टेलर मेड तरीक़ाकार है। तुम्हारी खताओं से दरगुजर फरमाएगा, वो बड़ा माफ़ करने वाला और रहीम है। इनसे कहो कि अल्लाह और रसूल की इताअत कबूल करो, फिर अगर वो तुम्हारी ये दावत कबूल ना करें तो यकीनन ये मुमकिन नहीं कि अल्लाह ऐसे लोगों से मोहब्बत करे जो इसकी और इसके रसूल की इताअत से इनकार करते हों। या ज़रा सा सोचिएगा, यहाँ बैठ के इंसान अपने हर अमल को परखे, हर वो अमल जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के मुताबिक है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, और अगर अल्लाह के रसूल की इताअत नहीं है तो अल्लाह की मोहब्बत भी नहीं है।